पाठ दो, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पाषाण काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्रीहिस्ट्री, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री तथा इतिहास या हिस्ट्री, इन तीन भागों में किया गया है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। लिपि के स्पष्ट प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिल जाते हैं, किंतु उसका वाचन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी, अतः सिंधु तथा वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए प्रागैतिहास के स्थान पर आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत वे धातुकालीन सभ्यताएँ आती हैं जिनके विषय में लिखित प्रमाणों से प्रकाश नहीं पड़ता। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस प्रकार कालक्रम की दृष्टि से मानव सभ्यता का 0.001% काल ही ऐतिहासिक है। यह मानव मात्र के विकास से संबंधित है। इस काल का इतिहास हम एकमात्र उन पुरावस्तु तथा उपकरणों से ज्ञात करते हैं जिनका उपयोग आदि मानव ने किया है। आगे हम सुनेंगे जो उपरोक्त विवरण है। पाषाणकालीन संस्कृति। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। तत्पश्चात विलियम किंग, ब्राउन, काकबर्न, सीएल कार्लाइन आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डीटेरा तथा पीटरसन द्वारा किया गया। इन दोनों विद्वानों के निर्देशन में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया था। इन अनुसंधानों से भारत की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी बढ़ी। विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी पर आदिमानव के अवशेष सर्वप्रथम प्राचीनतम काल प्लिस्टोसीन में मिलते हैं, जिसकी संभावित तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही मानव विकास का युग भी कहा जाता है। आदि भारत में जीवाश्म भारत में अभी तक नहीं मिले थे, किंतु हाल ही में गुजरात के कांबे खाड़ी में 9,500 वर्ष पूर्व का अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता को खोज निकालने का दावा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। वर्तमान समुद्र के जल स्तर से 20 से 40 फीट की गहराई में मिली सामग्रियां हड़प्पा के पहले की सभ्यता का संकेत देती हैं। सचिव डॉ. हर्ष गुप्त के अनुसार यहां नूतन काल होलोसिन पीरियड में मनुष्य निवास करता था, जिसकी प्राचीनता ईसा पूर्व 10,000 तक जाती है। यहाँ के निवासी मिट्टी तथा भूसे से निर्मित ईंटों की सहायता से अपना घर बनाते थे। जीवन शैली विकसित थी, मनुष्य समूह बनाकर रहने लगा था। गृह निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां तथा कई कलाकृतियां खोज निकाली गई हैं। धारदार तथा छेद वाले पत्थर तथा मड़ियों जैसी बस्तर कलाकृतियां मिली हैं जो तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करती हैं। साथ साथ मर्तबान के टुकड़े, जानवरों की हड्डियां, मनुष्यों के दांत आदि भी समुद्र तल पर गड़े हुए मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में भी प्राचीनतम मानव सभ्यता के अवशेष विद्यमान थे। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। किसी भी व्यवस्थित अध्ययन के लिए सुनिश्चित शब्दावली अनिवार्य आवश्यकता होती है। अतः पुराविदों ने प्रागैतिहासिक काल के विभाजन के लिए अनेक शब्दावलियों को प्रस्तुत किया। 1776 ईस्वी में पी एफ सोम ने डेनमार्क के प्रागैतिहास से संबंधित सांस्कृतिक चरणों को 3 कालों में विभाजित किया था, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। 1836 में टॉमसन ने इसी का अनुकरण किया। फ्रांसीसी विद्वान सर जॉन लुब्बक, जो बाद में लॉर्ड अवेवरी नाम से जाने गए, ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण तथा नव पाषाण में किया, जो पाषाण उपकरणों के प्रारूप एवं तकनीकी के आधार पर किया गया था। कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि नवपाषाण मनुष्य के सांस्कृतिक इतिहास के अपेक्षाकृत नूतन भूतकाल का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण पूर्व पाषाण काल के विस्तृत अवधि के पूर्व पुनर्विभाजन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः लार्टेट ने 1870 ईस्वी के दशक में इसका विभाजन प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल मध्य पूर्व पाषाण काल एवं उच्च पूर्व पाषाण काल इन तीन कालों में किया। यह विभाजन मुख्यतः विभिन्न पाषाण उद्योगों के अनुसार चलने वाले प्राणी समूह में परिवर्तन को दृष्टि में रखकर किया गया था। लार्टे द्वारा प्रस्तावित विभाजन ही सामान्यतः विश्व प्रागितिहास के संदर्भ में स्वीकृत है। 1961 ईस्वी में प्रथम एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें यह मत दिया गया कि चूंकि भारत तथा अफ्रीका के पाषाण काल में अधिक निकटता है, अतः वह वहीं की शब्दावली मानते हुए भारत के लिए भी पूर्व मध्य एवं उत्तर पाषाण काल शब्दावली प्रयोग किए जाने का सुझाव सामने आया। इसके पीछे मुख्य तर्क यह था कि भारत में उच्च पूरा पाषाणकालीन सामग्री नहीं मिलती। 1960 ईस्वी के पहले पूर्व पाषाण काल को प्रस्तर युग कहा जाता था, क्योंकि यह माना गया कि भारत में कोई उत्तर पाषाण युग ही नहीं था। अतः समस्त अत्यंत नूतनकालीन सांस्कृतिक का विभाजन पूर्व प्रस्तर एवं मध्य प्रस्तर काल में कर दिया गया, किंतु देश के विभिन्न भागों में उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाने से पाषाण काल का विभाजन तीन कालों में कर दिया गया। पूर्व अथवा पूरा पाषाण काल के विषय में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान विशेषकर फ्रांस में प्रारंभ हुआ, अतः वहीं की शब्दावली को मानक रूप में स्वीकार किया जाता है। अफ्रीका में पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक तथा मध्य मिडिल तथा उत्तर लेट पाषाण काल का नाम दिया गया। यूरोप में इसका नामकरण निम्न मध्य तथा उच्च लोअर मिडिल तथा अपर पूर्व या पूरा पाषाण काल के रूप में हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल का विशिष्ट उपकरण ब्लेड ब्यूरिन है। चूंकि भारत के विभिन्न भागों से अब उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्रकाश में आ चुके हैं, अतः भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण भी यूरोप के अनुसार ही किया जा सकता है, जो निम्नवत है: पूर्व या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर तीन कालों में विभाजित किया जाता है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पूरा पाषाण काल के हम निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में जानना चाहते हैं। जो भारत के विभिन्न भागों से निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त होते हैं, इनमें दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला विभाजन इनका है निम्न पूर्व पाषाण काल का, इसमें जो पहला है यह चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है तथा दूसरा है हैंडेक्स संस्कृति। जो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, वह पेबुल कहे जाते थे। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई गई है। चॉपिंग उपकरण द्विधारा बाईफेसियल होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई गई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही ओर फलक निकालकर जो उस पर धार बनाई जाती थी उसे चापर कहते हैं, और पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाए जाने वाले उपकरण को चॉपिंग कहते हैं। जो दूसरी संस्कृति है हैंडेक्स संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै अथवा तथा अतिरम्पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इन दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। आगे आप सुनेंगे जो ये उपकरण प्राप्त किए गए हैं, इसमें सोहन संस्कृति है। सोहन जो है सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व है। 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। 1930 में के आर यू टाड ने कर्नल टाड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक के विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्होंने हिम तथा अंतरहिम, ग्लेशियर तथा इंटरग्लेशियर कालों के क्रम के आधार पर पाषाणकालीन सभ्यता का विश्लेषण किया। सोहन नदी घाटी की पांच वेदिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इन्हें सोहन उद्योग, सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय, हिमयुग में भारी वर्षा के कारण पुष्वल शिवालिक क्षेत्र में बोल्डर कांग्लोमरेट का निर्माण हुआ। बोल्डर वे पाषाण खंड है जिन्हें नदी की धाराओं द्वारा पर्वतों या शिलाओं से तोड़कर बहा लिया जाता है। ऐसे पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही बोल्डर कांग्लोमरेट की संख्या दी जाती है। डिटेरा तथा पीटरसन ने बोल्डर कांग्लोमरेट के स्थलों से ही बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए। इन सभी का निर्माण क्वार्जाइट नामक पत्थर द्वारा किया गया है। फलक अत्यंत घिसे हुए हैं। इनका आकार प्रायः कोन जैसा है। ये उपकरण सोहन घाटी में मिलने वाले उपकरणों से भिन्न है। इसी कारण विद्वानों ने इन्हें प्राक सोहन नाम दिया है। ये उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया गया है। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कगार या वेदिकाएं बन गई। जब जलवायु शुष्क होने पर नदियों का पानी घट जाता है या दिशा बदल जाता है, तब उनके किनारों पर ढालू जमीन निकल जाती है। इसी को वेदिका कहा जाता है। तो सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया है और जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक वेदिकाएं बन गईं। द्वितीय अंतर, हिमकाल में पहली वेदिका का निर्माण हुआ। इससे मिले हुए पाषाण उपकरणों को आरंभिक सोहन कहा गया। ये निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं तथा इनमें चापर और हंडेक्स दोनों ही परंपराओं के उपकरण सम्मिलित हैं। चापर उपकरण पेबुल तथा फ्लैक पर बने हैं। इनके लिए चिपटे तथा गोल दोनों ही आकार के पेबुल प्रयोग में लाए गए हैं। इन प्रारंभिक उपकरणों को अ, ब तथा स तीन कोटियों में विभाजित किया गया है। अ कोटि के उपकरण अत्यधिक टूटे फूटे तथा घिसे हुए हैं। इनके ऊपर काई तथा मिट्टी जमी हुई है। ब कोटि के उपकरणों के ऊपर भी काई तथा मिट्टी जमी हुई है, तथापि ये कम घिसे हुए हैं तथा टूटे फूटे नहीं हैं। इनमें कुछ फलक उपकरण भी हैं। स कोट के अंतर्गत अपेक्षाकृत नए उपकरण हैं जिनके ऊपर काई तथा मिट्टी बहुत कम लगी है। इनमें फलक अधिक संख्या में हैं। कुछ फलक उपकरण बड़े तथा कुछ मोटे हैं। पेबुल तथा फलक उपकरणों के साथ ही साथ सोहन घाटी की प्रथम वेदिका से ही कुछ हैंडेक्स परंपरा के उपकरण भी मिले हैं। ये दक्षिण की मद्रास परंपरा के समकालीन हैं। विद्वानों ने इनकी तुलना यूरोप के पाषाणकालीन उपकरणों से की है जिनका निर्माण अल्बेविलियन अल्चुलियन प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। सोहन की पहली वेदिका से कोई जीवाश्म नहीं प्राप्त हुआ है। सोहन घाटी की दूसरी वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में हुआ। इस वेदिका के उपकरणों को उत्तरकालीन सोहन कहा गया है। इन्हें अ तथा ब दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अ श्रेणी के पेबुल उपकरण आरंभिक सोहन पेबुल उपकरणों की अपेक्षा अधिक सुंदर तथा विकसित हैं। इनमें फलकों की संख्या ही अधिक है। उपकरणों में पुनर्गठन बहुत कम मिलता है। फलकीकरण या फ्लेकिंग लेवलाइजियन प्रकार की है। बस श्रेणी के उपकरण नए तथा अच्छी अवस्था में हैं। इनमें फलक तथा ब्लेड अधिक संख्या में मिलते हैं। कुछ अत्यंत पतले फलक भी मिलते हैं। इस स्तर से कोई हैंडेक्स नहीं प्राप्त होता है। समय की दृष्टि से उत्तरकालीन सोहन उपकरण मध्य पूर्व पाषाण कालिक हैं। सोहन घाटी की तीसरी वेदिका का निर्माण तृतीय अंतरहिम काल में हुआ। इससे कोई भी उपकरण नहीं मिलता है। उत्तरकालीन सोहन के अंतर्गत चौंतरा से प्राप्त उपकरणों का विशेष महत्व है। इन उपकरणों में प्राक सोहन के कुछ फलक, सोहन परंपरा के पेबुल तथा फलक और मद्रास परंपरा के हैंडेक्स आदि सभी मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि चौंतरा उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। डिटेरा की धारणा है कि आदि मानव पंजाब में दक्षिण से ही आया तथा उसी के साथ हैंडेक्स परंपरा भी यहाँ पहुँची थी। चौंतरा उद्योग का समय तीसरा अंतर हिमकाल माना गया है। सोहन की चौथी वेदिका का निर्माण चौथे हिमकाल में हुआ। इससे मिले हुए उपकरणों को विकसित सोहन की संज्ञा दी गई है। 1932 ईस्वी में टाड ने पिंडीघेप के समीप ढोक पठार से इन उपकरणों की खोज की थी। इनमें ब्लेड पर निर्मित उपकरण ही अधिक हैं। आकार प्रकार में ये पूर्ववर्ती उपकरणों से छोटे हैं। सोहन की पांचवी तथा अंतिम वेदिका से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। सोहन संस्कृति के उपकरण भारत के कुछ अन्य भागों से भी प्राप्त होते हैं। सिरसा, व्यास, वनगंगा, नर्मदा आदि नदी घाटियों की वेदिकाओं से ये उपकरण प्रकाश में आए हैं। आरंभिक सोहन प्रकार के पेबुल उपकरण चित्तौड़, राजस्थान, सिगरौली तथा बेलन नदी घाटी क्रमशः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जिलों में स्थित हैं। मयूरभंज उड़ीसा में है, जो साबरमती तथा माही नदी घाटियाँ जो गुजरात में हैं एवं गुद्दलूर तथा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में हैं से प्राप्त किए गए हैं। डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने कश्मीर घाटी में भी अनुसंधान किया। उन्होंने यहाँ प्राचीनतम काल के जमाओं का अध्ययन किया, किंतु इस क्षेत्र से उन्हें मानव आवास का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका। 1969 ईस्वी में SD सांकलिया ने श्रीनगर के कुछ दूरी पर स्थित लिद्दर नदी के तट पर बसे हुए पहलगाम से एक बड़ा फलक उपकरण तथा बिना गढ़ा हुआ हैंडेक्स प्राप्त किया। 1970 ईस्वी में सांकलिया तथा RV जोशी ने कश्मीर घाटी में पुनः अनुसंधान के फलस्वरूप नवपाषाण उपकरणों की खोज किया। इनमें स्क्रेपर भेदक या बोरर, आयताकार कोर तथा हैंडेक्स वाला चापर आदि है। इसी प्रकार पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक क्षेत्र से भी पूर्व पाषाण काल के कई स्थलों का पता चला है। 1951 ईस्वी में ओलफ रूफर नामक विद्वान ने सतलज की सहायक नदी सिरसा की घाटी में खोज करके निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किया था। तत्पश्चात डिसेन को इसी नदी घाटी की वेदिकाओं से क्वार्जाइट पत्थर के बने पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए। 1955 में बीबी लाल ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ब्यास बनगंगा की घाटी में अनुसंधान किया। यहाँ उन्हें विभिन्न पुरास्थलों से चापर चैपिंग पेबुल हैंडेक्स आदि पूर्व पाषाणकालिक उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान तथा गुजरात की पुरास्थलों से भी कई पाषाण उपकरण मिलते हैं। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन टोंस की एक सहायक नदी है जो मिर्जापुर के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में बहती है। इस नदी घाटी में विभिन्न पुरास्थलों से पाषाण काल के सभी युगों से संबंधित उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म मिलते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल मिलते हैं। बेलन घाटी के प्रथम जमाव से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें सभी प्रकार के हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पेबुल पर बने हुए चापर उपकरण आदि सम्मिलित हैं। हैंडेक्स 9 सेमी से लेकर 38.5 सेमी तक के हैं। कुछ उपकरणों में मुठिया लगाने का स्थान भी मिलता है। ये उपकरण क्वार्जाइट पत्थरों से निर्मित हैं। बेलन घाटी से मध्य तथा उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण फ्लेक पर बने हैं। इनमें बेदक, स्क्रैपर, ब्लेड आदि हैं। इनका निर्माण महीन कण वाले बढ़िया क्वार्जाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ के उच्च पूर्व पाषाणकालिक उपकरण ब्लेड, भेदक, ब्यूरिन, स्क्रैपर आदि हैं। ब्लेड बेलनाकार कोर के बने हैं, कुछ 15 सेमी तक लंबे हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थ निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संपत्ति कौसाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालिक संस्कृति का समय ईसापूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। गोदावरी, नर्मदा, बेलन आदि नदी घाटियों से विभिन्न पशुओं के जीवाश्मों के साक्ष्य भी मिलते हैं जो निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं। इनके आधार पर विद्वानों ने इस काल का समय प्राचीनतम काल में निर्धारित किया है। जो दूसरा है वह दक्षिण भारत की हैंडेक्स परंपरा है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए, इसी कारण से मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। जैसा कि पहले मैं कह चुका हूँ कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। VD कृष्णास्वामी, RV जोशी तथा KD बनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए। दक्षिणी भारत की कोर्तेयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी घाटी में स्थित बदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं जिनका निर्माण क्वार्जाइट पत्थर से किया गया है। बदमदुरै के पास कोर्तेयार नदी की 3 वेदिकाएँ मिली हैं। इन्हीं से उपकरण एकत्र किए गए हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे नीचे की वेदिका को बोल्डर कांग्लोमेट कहा जाता है, इससे कई औजार हथियार मिलते हैं। इन्हें भी विद्वानों ने 2 श्रेणियों में रखा है। प्रथम श्रेणी में भारी तथा लंबे हैंडेक्स और कोर हैं। इन पर सफेद रंग की काई जमी हुई है। इन उपकरणों के निर्माण के लिए काफी मोटे फलक निकाले गए हैं। हैंडेक्सों की मुठियों के सिरे काफी मोटे हैं। कोर उपकरणों के किनारे टेढ़े मेढ़े हैं तथा उन पर गहरी फ्लैकिंग के चिन्ह दिखाई देते हैं। हैंडेक्स फ्रांस के अबेबेलियन परंपरा के हैंडेक्सों के समान है। द्वितीय श्रेणी में भी हैंडेक्स तथा कोर उपकरण ही आते हैं, किंतु वे कलात्मक दृष्टि से अच्छे हैं। इन पर सुव्यवस्थित ढंग से फलकीकरण किया गया है। कहीं कहीं सोपान पर फलकीकरण के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इस श्रेणी के हैंडेक्स अशुलियन कोटि के हैं। दूसरे वर्ग के उपकरण कलात्मक दृष्टि से विकसित तथा सुंदर हैं। चूंकि बीच की वेदिका लाल रंग के पाषाणों से निर्मित है, इस कारण इनके संपर्क से उपकरणों का रंग भी लाल हो गया है। इस कोटि के हैंडेक्स चौड़े तथा सुडौल हैं। इन पर सोपान पर फलकीकरण सबसे अधिक है तथा पुनर्गणन के भी प्रमाण मिलते हैं। इन्हें मध्य अशुलियन कोटि में रखा गया है। तीसरे वर्ग के उपकरणों का रंग न तो लाल है और न उनके ऊपर काई लगी हुई है, ताकि दृष्टि से ये अत्यंत विकसित हैं। अत्यंत पतले फलक निकाल कर इनको सावधानी पूर्वक गढ़ा गया है। हैंडेक्स अंडाकार तथा नुकीले दोनों प्रकार के हैं। बदमधुरे से कुछ क्लीवर तथा कोर उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कोर्तलयार घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्वपाषाणिक स्थल अतिरम्पक्कम है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में हैंडेक्स क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंडेक्स पतले लंबे चौड़े तथा फलक निकाल कर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडेक्स अशुलियन प्रकार के हैं। भारत के अन्य भागों से भी मद्रासी परंपरा के उपकरणों की खोज की गई है। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की सोन घाटी, महाराष्ट्र की गोदावरी तथा सहायक प्रवरा घाटी, कर्नाटक की कृष्णा तुंग भद्रा घाटी, गुजरात की साबरमती तथा माही नदी घाटी, राजस्थान की चंबल घाटी, उत्तर प्रदेश की सिगरौली बेसिन, बेलन घाटी आदि से ये उपकरण मिलते हैं। ये सभी पूर्व पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के हैं। तीसरा जो दूसरा है वह मध्य पूर्व पाषाण काल है। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल के मध्य रखा जाता है। इनका निर्माण फलक या फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इनमें विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि हैं। किसी किसी स्थान से लघुकाय सुंदर हैंडेक्स तथा क्लीवर उपकरण भी मिलते हैं। बहुसंख्यक कोर, फ्लैक तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इसमें चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों को लगाया गया है। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि सभी प्रांतों के विभिन्न पुरास्थलों से खोज निकाले गए हैं। महाराष्ट्र में निवासा, बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिले, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी में जो है सिगरौली बेसिन जो मिर्जापुर में है, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, राजस्थान में बगान, बेरांच, कादमली घाटियों, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास बांध गंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से ये उपकरण उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार मध्य पूर्व पाषाणकालिक संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। जो उच्च पूर्व पाषाण काल है, यह यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के भागों में मध्य पूर्व पाषाण काल के पश्चात उच्च पूर्व पाषाणकालिक संस्कृति का समय आया। इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड हैं। ब्लेड पतले तथा सकरी आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। प्रारंभ में पुराविद भारतीय प्रागैतिहास में ब्लेड प्रधान काल मानने को तैयार नहीं थे, किंतु बाद में विभिन्न स्थानों से ब्लेड उपकरणों के प्रकाश में आने के परिणाम स्वरूप यह स्वीकार किया गया कि यूरोप तथा पश्चिमी एशिया की भांति भारत में भी ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल का अस्तित्व था। भारत की जिन स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला है, उनमें बेलन तथा सोन घाटी, उत्तर प्रदेश, सिंहभूमि, बिहार, जोगदहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर जो मध्य प्रदेश में है, पटणे, भदणे तथा इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, रेणीगुंता, वेमुला, कनूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है, सोरापुर दुआब कर्नाटक में जो है, विस्दी जो गुजरात में है तथा बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान में है का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इन स्थानों से प्राप्त इस काल के उपकरण मुख्य रूप से ब्लेड पर बने हैं। इसके साथ साथ कुछ स्क्रेपर, बेधक, छिद्रक भी मिले हैं। ब्लेड उपकरण एक विशेष प्रकार के बेलनाकार कोरों से निकाले जाते थे। इनके निर्माण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। पाषाण के अतिरिक्त इस काल में हड्डियों के बने हुए कुछ उपकरण भी मिलते हैं। इनमें स्क्रेपर, छिद्रक, बेधक तथा धारदार उपकरण हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से मिली हुई अष्ट निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। वाकणकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है विंध्य क्षेत्र की शिलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल के ही हों। इनसे तत्कालीन मनुष्यों की कलात्मक अभिरुचि भी सूचित होती थी। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं। भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल की अवधि ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के मध्य निर्धारित की गई है। पूर्व पाषाण काल इस मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से परिचित अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म अथवा पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था। वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो अगला है वह मध्य पाषाण काल है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। इन उपकरणों के विस्तार को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल का मनुष्य अपेक्षाकृत एक बड़े भूभाग में निवास करता था। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, भेदक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सिंह के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, चैल्सेडनी, जेस्पर, एगेट, क्वार्जाइट, फ्लेंट जैसे कीमती पत्थरों के हैं। कुछ उपकरण त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के हैं। मध्य पाषाण काल के जिन स्थानों की खुदाइयां हुई हैं उनमें कब्रिस्तानों की संख्या ही अधिक है। यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मध्य पाषाण काल के पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जहाँ से पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन के बाद लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर है। यहाँ 1969 से 1970 तक वीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त लौह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए। पाषाण उपकरणों के साथ साथ बागोर से मानव कंकाल भी मिला है। गुजरात प्रांत में स्थित लघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ एच डी सांकलिया, बी सुब्बाराव, ए आर कनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों में फ्लैक ही अधिक हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड, गिद्दलूर तथा रेणिगुंटा प्रमुख स्थल हैं, जहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण प्रकाश में लाए गए हैं। कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर सुब्बाराव तथा संकलिया द्वारा क्रमशः 1946 तथा 1969 में खुदाइयाँ करवाई गईं, जिसके फलस्वरूप अनेक उपकरण प्राप्त हुए। तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली जिले में स्थित टेरी पुरास्थलों से भी बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मध्य पाषाणिक अवशेषों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1964 ईस्वी में आरवी जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। इसी प्रकार रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिलते हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में वीएस वांगड़कर ने की थी। बिहार प्रांत के रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर आदि जिलों में अनेक लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। पश्चिमी बंगाल के बर्धवान जिले में स्थित बिरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण की पुरास्थल है, जहाँ 1954 से 1957 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीबी लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से लगभग 282 लघु पाषाण मिलते हैं, जिनमें ब्लेड, वेधक, ब्यूरिन, चांद्रिक, स्क्रैपर, छिद्रक आदि हैं। डॉक्टर लाल ने इसका समय ईसा पूर्व 4000 निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी जिले की चकिया तहसील, मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद की मेजा, करछना तथा बारह तहसीलों के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित मोरहाना पड़ा, मोरहाना पहाड़, बगही, खोर, लेखैया तथा इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित चोपनी मांडो नामक मध्य पाषाण काल के पुरास्थलों की खुदाइयाँ 1962 से 1980 के बीच में करवाई गईं। इन स्थलों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरणों के साथ ही साथ नर कंकाल भी मिलते हैं। लेखैया से ही 17 नर कंकाल प्राप्त किए गए हैं। अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में हैं। मिर्जापुर जिले से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। उपकरण क्रमशः लघुतर होते गए हैं। इलाहाबाद का चोपनी मांडव पुरास्थल 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, टेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों का निर्माण चर्च, चार्ल्स सिडनी आदि पत्थरों से किया गया है। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाइयों से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिलते हैं। कुछ हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो के मध्य पाषाणिक उपकरणों का काल 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। चोपनी मांडो के अतिरिक्त इलाहाबाद जिले के अन्य प्रसिद्ध पुरास्थल जमुनीपुर, फूलपुल तहसील में जो हैं कुढ़ा, बिछिया, भीखपुर तथा मरुडी कोराँव तहसील हैं, जहाँ से मध्य पाषाण युग के उपकरण प्रकाश में आए हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहाल तथा दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थलों का उत्खनन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जी आर शर्मा तथा उनके सहयोगियों आर के वर्मा एवं वी डी मिश्र के द्वारा करवाया गया। सराय नाहर राय के लघु पाषाण उपकरण कुंठित, ब्लेद, स्क्रैपर, चांद्रिक, भेदक, समबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज हैं, जिनके निर्माण में चर्ट, चालसेडनी, अगेट, जैस्पर आदि पत्थरों का उपयोग किया गया है। कुछ हस्ती तथा सिंह निर्मित उपकरण भी मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाई में 14 शवाधान तथा 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। शवाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधि तथाओं का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। उनके साथ लघु उपकरण भी रखे गए हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियाँ भी मिलती हैं। इससे लगता है कि इनका उपयोग मांस भुनने के लिए किया जाता था। महदहा की खुदाई 1978 से 1980 के बीच की गई। यहाँ से भी लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं समाधान तथा गर्त चूल्हे होते हैं। किसी किसी समाधि में स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। समाधियों से पत्थर एवं हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं। महदहा से सिर, लोढ़े, हथौड़े के टुकड़े आदि भी प्राप्त होते हैं। इससे लगता है कि लोग घास के दानों को पीसकर खाने के काम में लाते थे। महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील का पुरास्थल बसा हुआ है। 1982 से 1987 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, छिद्रक, चांद्रिक आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्जाइट, चर्च, चालसिडनी, अगेट, कार्नेलियल आदि बहुमूल्य पत्थरों से हुआ है। हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिलते हैं। इनके साथ साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, चीतल, बारहसिंगा, सुअर आदि की हड्डियाँ भी प्राप्त होती हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनसे स्पष्ट है कि इस काल का मनुष्य इन पशुओं का मांसाहार करता था, जिसे चूल्हे पर पकाया जाता होगा। सील, लोढ़े, हथौड़े आदि के टुकड़े भी मिलते हैं। दमदमा के अवशेषों का काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। सराय नाहर राय, मदहा एवं दमदमा के मध्य पाषाणिक स्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की महत्वपूर्ण खोजें हैं। मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन पूर्ण पाषाण काल के मनुष्यों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यद्यपि अब भी वे अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर करते थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंसे आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। सराय नाहर राय तथा महदहा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ज्ञात होता है कि अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी रख देते थे। संभवतः यह किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था। उत्तर अथवा नवपाषाण काल। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 9000 में हुआ, किंतु भारत में नवपाषाणी कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मानी जाती है। ईसा पूर्व 5000 के पूर्व यहाँ के लोग मृदभांड का प्रयोग करना नहीं जानते थे। उत्खनन में यहाँ से कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सान पत्थर जिसे ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं, तथा पालतू जानवरों की अस्थियां मिलती हैं। मेहरगढ़ का दूसरा स्तर ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे के प्रयोग से परिचित थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मध्य भारत के साथ साथ ईरान तथा अफगानिस्तान से उसका संपर्क था। वे गेहूँ, जौ तथा कपास की खेती करते थे तथा अपने मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। उनका जीवन अन्य लोगों के अपेक्षा अधिक उन्नत था। भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत। इन क्षेत्रों से अनेक नवपाषाण कालिक पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। विल डूरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाण कालीन आखेट से कृषि में संचरण था, आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण है। उत्तर भारत की नवपाषाण कालिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्तनों का उल्लेख किया जाता है। इनमें बुरजोहन तथा कुफकराल का विशेष महत्व है। बुरजोहन नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डिटेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से 64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई करवाई गई। कुफकराल नामक पुरास्थल की खुदाई 1981 में AK शर्मा ने करवाई थी। यहाँ के उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, बसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा, सिर बेधक आदि हैं। पत्थर के अतिरिक्त हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। इनमें पॉलिशदार बेधकों की संख्या अधिक है। भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी खुदाई में प्राप्त होते हैं। जौ, गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिलते हैं। बुरजोहन की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। शवादान के जो उदाहरण मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। गुफकराल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे भी तथा हड्डी की बनी सुइयाँ भी मिलती हैं। इनसे सूचित होता है कि अनाज पीसने तथा वस्त्र सीने की विधि से भी उस काल के लोग परिचित थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनका निर्माण चाक तथा हाथ दोनों से किया गया है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थल इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर स्थित कोलडीहवा, महगड़ा तथा पंचो हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा खुदाइयाँ करवाई गई हैं। कोलडीहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपात तथा लौहकालीन युग संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। महगड़ा तथा पंचोह से केवल नवपाषाण कालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उपकरणों में गोल समानांतर वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों की संख्या ही अधिक है। अन्य उपकरण हथौड़े, छेनी, बसुली आदि हैं। स्तंभ गाढ़ने के गड्ढे मिले हैं, जिनसे लगता है कि इस काल के लोग लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़कर अपने रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियाँ बनाते थे। हाथ से बनाए गए विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यहाँ का एक विशिष्ट बर्तन रस्सी छाप है। इसकी बाहरी सतह पर रस्सी छाप लगाई गई है। इसके अलावा खुरदुरे तथा चमकीले बर्तन भी हैं। बर्तनों में कटोरे, तस्तरी, घड़े आदि हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। पशुओं में भेड़, बकरी, सुअर, हिरण की हड्डियाँ मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि इन जानवरों को पाला जाता अथवा शिकार किया जाता था। कोलडीहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 7000 से 6000 प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी। अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी कोलडीहवा एवं महगड़ा से मिलते हैं। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण उपाषाणकालीन पुरास्थल चिरान बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ के उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर के कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़ा, हड्डी और सींग के बने हुए छेनी, बर्मा बाण, कुदाल हैं। ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे। धान तथा मसूर, मूंग, गेहूं, जो आज की खेती करना जानते थे। गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गैंडा आदि पशुओं से उनका परिचय था। कुछ हड्डियां प्राप्त होती हैं। बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित बरुडीह तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई भी नवपाषाण युगीन पुरास्थल हैं, जहाँ से पॉलिशदार पत्थर कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई हैं। कुदाल, छेनी, बसुली, लोढ़ा आदि भी पाए गए हैं। बरुडीह से सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड भी प्रकाश में आए हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण युगीन प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इनमें कुल्हाड़ी, हथौड़े, सिर लोढ़े, मुसल आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। हाथ तथा चाक पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिलते हैं। विंध्य तथा गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृतियों में कुछ विषमताएं दिखाई देती हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रय पहाड़ आदि थे, जबकि गंगा घाटी में समतल मैदान थे। ये दलदल जिलों में परिवर्तित हो रहे थे। अतः गंगा घाटी में मानव ने घास फूस के घर बनाए, कृषि करना प्रारंभ किया तथा पत्थर के साथ साथ हड्डी तथा सिंह के उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए। गंगा घाटी में पाषाण उपकरण छोटे छोटे हैं। विद्वानों का विचार है कि बरसात के बाद लोग गंगा घाटी में आते थे तथा बरसात के दिनों में विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में लौट जाते थे। इसे ऋतुजन्य प्रवचन की संज्ञा दी गई है। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में चित्रकारियां मिलती हैं जो गंगा घाटी में नहीं है। गंगा घाटी के जीवन में एक अनुक्रम दिखाई देता है। यहाँ पाषाण काल के पश्चात ताम्रपाषाण, फिर लौह काल विकसित होता दिखाई देता है। द्वितीय नगर क्रांति यही मिलती है। निश्चित आवास, चिकने मिट्टी के बर्तन, पाषाण के साथ साथ हड्डी तथा हाथी दांत के उपकरण भी मिलते हैं, जिनका विंध्य क्षेत्र के अभाव तथा अत्यल्पता है। विस्तृत पैमाने में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र की मिट्टी बलुई तथा गंगा घाटी की जलोढ़ है, इसमें खेती अच्छी होती थी। विंध्य क्षेत्र में विशालकाय पशु मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा घाटी में लघुकाय पालतू पशुओं की संख्या अधिक है। विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी में आवागमन मुख्यतः सहसाराम की पहाड़ियों से होता था। उत्तरी भारत के ही समान दक्षिणी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कई पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, जहाँ की खुदाइयों से इस काल के अनेक उपकरण, मृदभांड आदि प्राप्त किए गए हैं। कर्नाटक में स्थित प्रमुख पुरास्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगन, कल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसिंहपुर, पिकलीहल, तेक्कल कोट हैं। आंध्र प्रदेश के पुरास्थल नागार्जुन कोंडा, उतनूर, पलवा एवं सिंगनपल्ली हैं। पय्यमपल्ली तमिलनाडु का प्रमुख पुरास्थल है। ये सभी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के घाटियों में बसे हुए हैं। इन स्थानों से पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ियाँ, स्लेटी या काले रंग के मिट्टी के बर्तन तथा हड्डी के बने हुए कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्णतया परिचित थे। मिट्टी तथा सरकंडे की सहायता से वे अपने निवास के लिए गोलाकार अथवा चौकोर घर बनाते थे। हाथ तथा चाक दोनों से वे बर्तन तैयार करते थे। कुछ बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। खुदाई में घड़े, तस्तरी, कटोरे आदि मिलते हैं। कुल्थी, रागी, चना, मूंग आदि अनाजों का उत्पादन किया जाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर उनके प्रमुख पालतू पशु थे। दक्षिणी भारत के नवपाषाण युगीन सभ्यता की संभावित तिथि ईसापुर 2500 से 1000 के लगभग निर्धारित की जाती है। नवपाषाण कालीन संस्कृति अपने पुरोगामी संस्कृतियों के अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वरन उनका उत्पादक भी बना। वह कृषि कर्म से पूर्णतया परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ पशुओं को मनुष्य ने पालना भी प्रारंभ कर दिया। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उसका परिचय बढ़ गया। मनुष्य ने अपने औजारों तथा हथियारों पर पालिश करना प्रारंभ कर दिया। पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मिलती हैं। इस काल के मनुष्यों का जीवन खानाबदोश तथा घुमक्कड़ न रहा। उसने एक निश्चित स्थान पर अपने घर बनाए तथा रहना प्रारंभ कर दिया। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी तथा संगनपुल बेलारी से प्राप्त नवपाषाण युगीन सभ्यताओं से पता चलता है कि वर्षों तक मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करता था। इस काल के मनुष्य मिट्टी के बर्तन मानते थे तथा अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित होने के कारण मनुष्य का जीवन अधिक सुरक्षित हो गया था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस युग के मनुष्य जानवरों की खालों को सीकर वस्त्र बनाना भी जानते थे। उत्तर पाषाण कालीन मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में भी रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। मध्य भारत की पर्वत कंदराओं से कुछ चित्रकारियां प्राप्त हुई हैं जो संभवतः इसी काल की हैं। ये चित्र शिकार से संबंधित हैं। इस काल के मनुष्य अपने बर्तनों को भी रंगते थे तथा उन पर चित्र बनाते थे।